لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. کل گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ جناب یوسف جب قید سے رہا ہو کر کے بادشاہ کے پاس آئے، اور بادشاہ سے گفتگو کے بعد جب اس نے جناب یوسف کی صلاحیت اور لیاقت کو پرکھ لیا اور سمجھ لیا کہ موجودہ بحران سے مصر کو جو ہے نجات دینے والا یوسف کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو اس نے پیشکش کی کہ آپ اصلاحات کے کام کو شروع کیجیے، بحران پہ قابو پانے کا عمل. اور انہوں نے تقاضا یہ کیا کہ مجھے خزانہ میرے حوالے کر دیا جائے، اقتصادیات میرے حوالے کر دی جائے. تو گفتگو یہ پہنچی تھی کہ بہرحال بادشاہ ایک تاغوت تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا، اور تاغوت یعنی غیر اللہ کی حکومت میں کسی قسم کا تعاون دینا شرعاً جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے. تو جناب یوسف کس طرح سے نہ صرف یہ کہ تعاون دینے کو تیار ہو گئے، بلکہ اپنی طرف سے بھی کچھ اور مزید تعاون کے لیے وہ آمادہ ہو گئے. ایسا کیوں؟ عرض کیا تھا کہ منع جہاں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ظالم کو تعاون دے رہے ہیں جس سے اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن دین کو، مذہب کو، قوم کو، ملت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس تعاون سے منع کیا گیا ہے. ہر تعاون سے منع نہیں کیا گیا ہے. بعض مقامات پر ظالم سے تعاون یہ جو ہے جائز ہے، بعض مقامات پر یہ جو ہے مستحب ہے، اور بعض جگہوں پر واجب ہو جاتا ہے. حرام تو ہے ہی ابتدان، بعض جگہوں پر واجب ہو جاتا ہے استثنائی صورت میں، جیسا کہ واقعہ پیش کیا تھا علی ابن یقین کا. تو قانون یہ ہے، قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر قانون یہ ہے کہ ظالم کو تعاون دینا حرام، لیکن اگر ظالم کو تعاون دینے سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، قوم کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک طرف سے اسے تعاون دینا ہے، اسے کم تعاون مل رہا ہے لیکن دین کو تعاون زیادہ مل رہا ہے، عوام کو تعاون زیادہ مل رہا ہے، عوام کو فائدہ یا کم سے کم جو نقصانات ہونے والے ہیں اللہ کے بندوں کو، ان نقصانات سے آپ یہ جو ہے بچا رہے ہیں یا کم کر دے رہے ہیں. چنانچہ علی بن یقین کے زمانے میں تھا کہ شیعوں پر خصوصی جو ہے لگائے جاتے تھے ٹیکس، تو ایک دروازے سے ٹیکس آتا تھا، دوسرے دروازے سے علی بن یقین واپس کر دیتے تھے. وزیر ہے نا، پورا تو ان کے اختیار میں ہے. یا کسی شیعہ کے اوپر یہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ گرفت میں لے لیا، نہیں سنوان سے کہ شیعہ یہ کہہ کے بھائی کیوں جو ہے باس خاص کر لیا، اس طرح وہ ظلم سے جو ہے بچ جایا کرتا تھا. لیکن جہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، ظالم کو تعاون مل رہا ہے اور ہمیں پیسہ مل رہا ہے صرف ہماری اپنی ذات کو، وہاں پر امام نے منع کر دیا ہے. چنانچہ مثال اسی زمانے کی، یعنی ساتویں امام جس نے علی بن یقین کو حکومت کے ساتھ تعاون کا حکم دیا، وہی امام صفوان جمال کو حکومت سے تعاون سے منع کر دے رہے ہیں. صفوان جمال کا قصہ ہے کہ جمال یعنی اونٹ والے، ان کے پاس اونٹوں کا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا ان کا. ہارون کو حج کے لیے جانا ہے، اب ظاہر سے بات ہے کہ اکیلے تو ہارون جائے گا نہیں، پورا لاؤ لشکر، اب اتنی مقدار میں اونٹ ان کے پاس دستیاب نہیں ہے. کرائے پر عام طور سے ہوتا بھی، حکومتیں اتنی زیادہ گاڑیاں اپنے پاس کہاں رکھتی، کوئی ایونٹ آتا ہے تو پھر باہر سے گاڑیاں حکومت کو لینی ہی پڑتی ہیں. تو اب یہاں کے اوپر اونٹ کا زمانہ ہے، ان سے کافی مقدار میں اونٹ کرائے پر ہارون نے دیا، ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، بڑا سودا بھی ہے. امام موسیٰ قادم علیہ السلام کو اطلاع ملی، ہارون وہ جب جو ہے صفوان جمال ہارون سے معاہدہ کر کے امام کے پاس آئے ہیں، تو امام نے کہا کہ صفوان میں نے سنا ہے کہ تم نے ہارون سے معاہدہ کیا، اگریمنٹ کیا ہے بزنس کا. ہاں مولا، وہ کسی غلط کام کے لیے نہیں، جنگ ونگ میں نہیں جا رہے ہیں، حج کے لیے یا نیک کام میں ہم نے ان سے جو ہے تعاون کیا ہے. کہا صفوان یہ بتاؤ کہ جب تک ہارون حج کر کے واپس نہیں آ جاتا تمہاری دعا کیا ہے، مر جائے ہارون یا جو ہے زندہ رہے اس وقت تک؟ मौला दुआ तो यही है कि जिंदा रहे, वरना जिंदा नहीं आएगा तो ना हमारा पैसा मिलेगा, ना हमारा माल वापस मिलेगा, ना ऊंट मिलेंगे, ना उजरत मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, सब चला जाएगा। वायदा उससे है। जब आपने फरमाया कि जालिम की जिंदगी की एक दिन की भी आरजू करना, ताबुन दे रहे हैं ना उसको, सफवान हारून को ताबुन क्या दे रहे हैं, उसकी जिंदगी की दोहा कर रहे हैं, तकवियत मिल रही है ना हारून को। हाँ, ये जो है दुआ किसकी, एक बंदे मोमिन की दुआ, सहाबी है महम की दुआ, असर की दुआ है ना, तो उसको तकवियत मिल रही है, दीन को क्या फायदा मिल रहा है, कुछ नहीं। सफवान को अब जाती तौर पर तो फायदा है, बिजनेस में उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन इस्लाम को क्या फायदा है, दीन को क्या फायदा है, कौम को क्या फायदा है, कौम और मिल्लत का कोई। अली इब्ने यक़ीन को जब भेजा है तो वहां पर अली इब्ने यक़ीन का भी जाती फायदा बना, जब वज़ीर बने हैं तो कुछ न कुछ तो तनख्वाह तो मिलेगी ही, उनका जाती फायदा भी है, लेकिन साथ साथ में फायदा किसका है, दीन का फायदा है, मजहब का फायदा। जितनी साजिशें हारून के दरबार में बनती थी इमाम के खिलाफ, सब इनके जरिए से इमाम तक पहुंच जाती थी। तो ये लिहाजा सफवान को इमाम ने जो है मना कर दिया और अली इब्ने यक़ीन को भेजा। सफवान इमाम के वाकई मानने वाले थे, हम जैसे लोग तो थे नहीं कि जहां अपना फायदा नजर आता है वहां इमाम जिंदाबाद, और जहां अपना फायदा है पता नहीं, समझ नहीं पाया लगता है इमाम, इमाम को अंदाजा नहीं हो पाया। नहीं, सफवान वाकई इमाम के मुतकिद हैं, इमाम के पैरो हैं, जैसे इमाम ने कहा ठीक है। अपना सारा बिजनेस उन्होंने जो है ठप कर दिया, जो है बंद कर दिया उसी दिन, क्योंकि बिजनेस करते और हारून से कहते मैं आपको ऊंट नहीं दूंगा, कभी तो नहीं हो सकता था, हुक्मरान है, हाकिम है, हमारे यहां तो आजकल हुकूमतें मांगती थोड़ी छीन लेती हैं, इलेक्शन का जमाना जब आता है इंडिया में तो गाड़ियां लोगों हुकूमत को बैठा, जरूरत पड़ती है गाड़ियों की तो हुकूमत गाड़ियां छीन लेती है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं रोड के ऊपर, लगा उस जमाने में लोग अपनी गाड़ियां बाहर निकालते नहीं थे, इलेक्शन के जमाने में छीन लेंगे गाड़ियां। तो बहरहाल वो ऊंट के कारोबार को बाकी रख करके हारून से इनकार नहीं कर सकते, उन्होंने सारा कारोबार ही खत्म कर दिया। हुक्म इमाम है ना, एक दो पैसे की बात नहीं है, करोड़ों और अरबों का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, खत्म कर दिया। आए हारून के पास, कभी बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे काम नहीं हो सकता, मैंने अपना कारोबार खत्म कर दिया, बेच दिया है, जो तो ऊंट का इंतजाम किसी और से करो, मैं नहीं कर सकता। तो कानून ये है, अगर फायदा आप किसे पहुंचा रहे हैं, मोमिने आले फिरौन का कल मैंने नाम लिया था, और मोमिने आले फिरौन एक वो शख्स हैं जो बातिन में जनाबे मूसा की नबूवत पर ईमान ला चुके हैं, खुदा पर उनका सलाम ईमान है, लेकिन वो अभी फिरौन के साथ हैं, कुल्लम कुल्ला अलग नहीं हुए थे और आला ओहदे पर हैं। बाद रवायतों में है कि ये जो है वली अहद थे उसके, यानी फिरौन के बाद हुकूमत उन्हें मिलनी थी, बात ये कि वली अहद नहीं थे लेकिन काबीना में उनको एक अहम पोजिशन हासिल थी। खुद मोमिन हैं, हुक्म खुदा के पाबंद हैं, जनाबे मूसा की नबूवत के कायल हैं, मगर फिरौन की हुकूमत में शामिल हैं, और जालिम की हुकूमत में शामिल होना मना। क्यों शामिल हैं? मूसा की जान बचाने के लिए, और बचाई, जनाबे मूसा की तहरीक काफी आगे बढ़ गई और फिरौन के यहां काबीना की जो है मीटिंग हुई, उसमें यह फैसला होने लगा कि अब मूसा का मामला बहुत आगे बढ़ गया है, इनको जो है वो कत्ल कर देना चाहिए। कुरान में मौजूद है कि फिरौन कहता है कि जरूरी अब तो मूसा, मुझे इजाजत दो, इजाजत देने की जरूरत तो कहते हैं ना, मुझे छोड़ दो, यानी मैं मूसा को जो है वो कत्ल कर देना चाहता हूं। जाहिर है जब फिरौन कहेगा मैं मूसा को कत्ल करना चाहता हूं तो और सब लोग क्या कहेंगे? यस बॉसी तो कहेंगे, क्योंकि उस जमाने में मशवरे तो होते थे, बादशाह मशवरा लेते थे, लेकिन मशवरे का मतलब ये नहीं होता था कि आप हाकिम की राय के खिलाफ इजहार राय करें, मशवरे का मतलब है कि आप उनकी हां में हां मिलाए, जी 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 हुजूर, जो आपने फरमाया हो, जो आपने फरमाया हो बिल्कुल सही। सारी काबीना फिरौन की तायद कर रही है कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए, अब ये मौका है मोमिने आले फिरौन के इम्तिहान का, गए हैं हुकूमत में आए इसीलिए हैं, इतने दिन तक जो ताउन किया है फिरौन की हुकूमत के साथ, मकसद यही था, अब यहां पर वो खड़े होंगे। और क्या खूबसूरत गुफ्तगू जनाबे मोमिने आले फिरौन ने की है कि जनाबे मूसा की जान बचाने में कामयाब भी हो गए, खुद को भी महफूज रखा, اور جناب موسیٰ کی جان بچانے میں بھی کامیاب ہو گئے. چنانچہ قرآن مجید نے پوری داستان کو نقل کر دیا. وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. فرعونیوں ہی میں سے ایک شخص جو اللہ پر اور جناب موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا, یَکْتُمُ ایمانہ, لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, اظہار نہیں کرتا تھا اپنے ایمان کا. جو اظہار کر دیتا تو وہاں پر اندر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. جیسے علی بن یقین نے, علی بن یقین بھی اپنی شیعیت کا اظہار نہیں کرتے تھے. ہارون کے پاس شکایتیں آتی تھیں, کہتے آپ نے آستین میں جو ہے سانپ پہل رکھا ہے, آپ نہیں جانتے علی بن یقین جو ہے موسیٰ بن جعفر کے امامت کے قائل ہیں. تو کئی دفعہ اس نے چھپ چھپ کے امتحان بھی لینا چاہا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں, امام موسیٰ بن جعفر کے ماننے والے ہیں یا نہیں, دیکھو یہ جو ہے وضو کیسے کرتے ہیں. اب چھپ کر کے وضو کر کے کرتے ہوئے ہارون کو دیکھنا ہے. امام نے فوراً ان تک پیغام بھیجوا دیا, آج سے وضو اپنا والا مت کرنا, ان کا والا وضو کرنا. بہرحال امام کا حکم ہے, وہ حکم ہے تو حکم ہے, اس میں چون شرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے اس طرح سے وضو کرنا شروع کر دیا. جو ہارون نے چھپ کے دیکھا, کہا کیا بکواس کرتے ہو, اگر یہ ان کے ماننے والے ہوتے تو بھلا وضو اس طرح سے کرتے, وہاں تو کوئی بھی نہیں, اکیلے میں ہے وہ کر رہے ہیں وضو اور ہم چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں. تب اطمینان ہو کہ نہیں یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ غلط ہیں. پھر امام نے کہا کہ جیسے پہلے کرتے تھے ویسے ہی. اسی طریقے سے بہت ہی قیمتی جو ہے کپڑا ہارون نے یہ جو ہے گفٹ کیا تھا علی ابن یقین, بہت قیمتی. علی ابن یقین نے دیکھا اتنا اچھا خوبصورت کپڑا ہے, میں اپنے امام کو کیوں نہ گفٹ کروں. انہوں نے وہ کپڑا بھیج دیا امام کی خدمت میں. امام نے وہ کپڑا واپس کر دیا, کہ رکھو تمہیں کام دے گا. امام ہے نا, رکھو تمہیں کام دے گا, مصلحتوں کو جانتے ہیں. اگر وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں تو امام کی ذمہ داری میں تو ان کی جان کی حفاظت ہے. ادھر سے تیاری ہے, ادھر سے حفاظت بھی ہے. امام نے کہا رکھے رہو تمہیں کام دے گا. پھر وہ شکایت ہوئی ساتھ لوگوں نے, جاتے ہوئے تو دیکھا تھا کپڑا, واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. پھر ہارون کے پاس سے کہا دیکھیے ہم آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے آدمی نہیں, یہ تو ان کے ہیں. وہ جو آپ نے ان کو دیا تھا لباس, اس زمانے میں بادشاہ کی طرف سے ملنے والی یہ جو ہے خلعت کہی جاتی تھی, جو کپڑا ملتا تھا لباس, اس خلعت کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی. لوگ احتیاط سے رکھتے تھے, نسلوں میں بھی اس کو منتقل کے لوگ دکھاتے تھے, یہ ہمارے پر دادا کو یہ کپڑا فلاں بادشاہ نے دیا تھا. یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہوتی تھی, خلعت بہت اہم ہوتی تھی. اچھا دیکھیے وہ جو خلعت آپ نے دی تھی وہ کہاں ان کے پاس؟ انہوں نے بھیج دی اپنے امام کے پاس. اچھا بلاؤ علی ابن یقین کو. بلائے گئے علی ابن یقین, وہ جو خلعت میں نے تمہیں دی تھی وہ ذرا لانا, تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. گئے لا کر کے پیش کر دیا بسم اللہ. اب سب کے چہرے فق, لوگوں نے سازش بنائی تھی. تو بہرحال اپنے عقیدے کو چھپا کر کے, علی ابن یقین بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اور مومن آل فرعون بھی. قرآن کہتا ہے یکتمو ایمانا, تقیہ کا ثبوت شیعہ اسی آیت سے پیش کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ تقیہ اسلام میں نہیں ہے, جو آپ کا عقیدہ آپ کھل کے کہہ دیجئے, جان خطرے میں ہے, جان بچے جائے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں, اگر بات حالات ہے کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے اصل عقیدے کو چھپا سکتے ہیں, اس کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے ہمارے دوسرے جو ہے یہ برادران, ان کا خیال ہے کہ نہیں شیعہ جھوٹ بولتے ہیں اور شیعوں کے ہاں جھوٹ جزوے مذہب ہے. نہیں, جھوٹ نہیں ہے, عقیدے کو چھپا لینا ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے, قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے. وقال رجل مومن, خدا مومن کہتے اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں. اب نہیں معلوم کہ وہاں قیامت کے دن خدا کیا کہے گا ہم سے, ہمارے ایمان کو قبول کرے گا ایمان کو قبول نہیں کرے گا. سند دے رہا ہے, قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا, جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. کیا کہا انہوں نے؟ بات کیا ہو رہی تھی؟ سب کی رائے بن گئی کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. اب یہ کھڑے ہو رہے ہیں, اتقتلون رجلا. اگر بعض دفعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہوا خراب ہے, سب لوگ ایک طرف ہیں, ہم اقلیت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ ہو جاتے ہیں. اقلیت کو چپ نہیں ہونا چاہیے, اکثریت سے کبھی مروب نہیں ہونا چاہیے. اپنی ذمہ داری آپ پوری کر دیں, ڈیوٹی اپنی پوری, اکیلے سے ہی.
अगर एक अकेला आदमी क्या बोले,
एक ही एक अकेले ही आदमी को बोलना है, और कभी कभी वही एक अकेला आदमी हवा का रुख जो है तब्दील कर देता है। ईरान में जिस वक्त ये जो है काजार हुकूमत चल रही थी, पहले भी हुकूमत से पहले की बात है, काजार हुकूमत का जमाना है, रूस ईरान के खित्ते के ऊपर जो है निगाहें गाड़े हुए, ईरान से कह रहा है ये इलाका हमें दे दो वरना मार के छीन लेंगे। आदमी होता है ना, बात ऊंधे आते हैं, दे दो वरना मार के छीन लेंगे। तो लोग कहते चलो ले जाओ। ईरान की हुकूमत से भी रूस की हुकूमत का तकाजा यह है कि यह इलाका दे दो वरना मार के छीन लेंगे। ईरान कमजोर मुल्क था, बहुत कमजोर, रूस ताकतवर मुल्क। चनाची तय पाया कि पार्लियामेंट में कानून पास करके यह इलाका रूस के हवाले कर दिया जाए। बादशाह की भी यही ख्वाहिश है, हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है, मेंबरान पार्लियामेंट भी, सब तय हो गया। बस अभी ये जो है रस्मी कार्रवाई करनी थी, रस्मी तौर पर पार्लियामेंट की मोहर लगनी थी। सैयद हसन मुदर्रिस एक आयतुल्लाह थे जो पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, वो आए पार्लियामेंट में, कहा मुझे कुछ कहना है। ये कहिए क्या कहना है, सुन लें इनकी बात भी, होना हमारा तो कुछ है नहीं, खड़े हुए और तकदीर किया। उन्होंने कहा कि भाइयों, एक शख्स आपसे कहता है कि तुम अपने को चाकू मार लो वरना मैं तुम्हें जो है गोली मार दूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप अपने को गोली मार लीजिए वरना मैं आपको गोली मार दूंगा, तो आप क्या करेंगे? खुद से मार लेंगे अपने को, मरना तो दोनों हाल में है ना, तो खुद से क्यों मरे? कम से कम अगर इन्होंने मारा तो हम मकतूल या कातिल तो कहलाएंगे, ये जालिम हम मजलूम कहलाएंगे, और अपने हाथ से मार लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खुदकुशी के गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। वो कहते हैं हम छीन लेंगे तो छीन लें, हम क्यों उनके हाथ में दें? हम खुद अगर अपनी तरफ से उनके हवाले कर देंगे तो कल आने वाली नस्ल अगर हमारी ताकतवर भी हो गई तो इनसे मांगने की हकदार नहीं होगी, लेकिन अगर ये छीन लेते हैं, आज हम कमजोर हैं, इनका मुकाबला करने के काबिल नहीं हैं, और ये छीन लेते हैं तो कल हमारे बच्चे जब जवान होंगे, ताकतवर होंगे, तो कल उनको हक तो होगा अपना हक वापस लेने के लिए। हम क्यों दें? एक बूढ़े सैयद हसन मुदर्रिस ने तकरीर किया, पूरी पार्लियामेंट की राय बदल दी, उनका नहीं, हम नहीं देते, नहीं दिया, और रूस भी उसे छीन नहीं सका। तथा कभी ये मत सोचे कि हम अकेले हैं, हम तनहा हैं, हम अकेले कम हैं, हमारे साथ खुदा है, हम अकेले नहीं है, जहां हक है वहां खुदा है, हमारे साथ इमाम ताहिरीन है, हमारे सर पर इमाम जमाना का हाथ है। अलबत्ता हक हो पहले फैसला कर लें कि जो बात कह रहे हैं जो मौकिफ है ये हक है या बातिल, ये तय कर लें। अगर मौकिफ हमारा हक है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे मोमिन आले फिरौन खड़े हो गए, इस्तदलाल किया, दलील अतः मंतिक पेश किया, अतक्तुलूना रजुलन, तुम सब ने फैसला कर लिया कि मूसा को कत्ल कर दें, क्या जुर्म है मूसा का? जुर्म क्या है? जुर्म यही है ना, यकूलो अतक्तुलो रजुलन अन यकूला रब्बी अल्लाह, ये जुर्म है ना, कि वो कहते हैं कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, तुम सब कहते हो परवरदिगार हमारा फिरौन, वो क्या कहते हैं, हमारा परवरदिगार हमारा रब कौन है? अल्लाह है। अयकूला रब्बी अल्लाह, और जो ये बात कह रहे हैं यूं ही नहीं कह रहे हैं, दलील भी पेश कर रहे हैं, आश्कार खुली हुई दलीलें, ऐसी दलील जो किसी से काटे न कट सके, वो भी पेश कर दिया। अयकूला रब्बी अल्लाह वक़द जाकुम बिल बय्यिनात मिन रब्बिकुम, और अपने उसी अल्लाह की तरफ से खुली आश्कार दलीलें मौजज़े लेकर के आए हैं। देख चुके ना उनका मौजज़ा, जादूगर लाए थे अंजाम देखा ना क्या हुआ, सारे मौजज़े देख चुके ना, कोई मामूली आदमी भी नहीं है। उसका दावा यह है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, और अपने इस दावे के सबूत में अपने खुदा की तरफ से लाया हुआ मौजज़ा भी पेश कर रहा है। अब दो हाल से खारिज नहीं, या ये झूठे हैं या सच्चे, दो ही बात हो सकती है ना। मूसा कहते हैं हम सब कहते हैं कि हमारा परवरदिगार कौन है, फिरौन। मूसा क्या कहते हैं, हमारा परवरदिगार कौन है? अल्लाह। उनके पास दलीलें भी अब दो हाल से खाली नहीं है, या दावा सच्चा या दावा झूठा। चलो पहले मान लेते हैं कि मूसा झूठे हैं, मान लेते हैं क्या हैं, झूठे हैं, मान लेते हैं, मानने में तो कुछ ज्यादा नहीं, मान लेते हैं कि मूसा क्या है, झूठे हैं।
इन यको कहां से पाए? अगर मूसा को झूठा मान करके इन्हें कत्ल कर दिया, मुश्किल हो रही है,
बहुत मुश्किल हो
रही है। इन यको कहां से मान, अगर मूसा को झूठा मान करके हमने उन्हें कत्ल कर दिया तो होगा क्या? कुछ लोग मूसा के तरफदार, कुछ मूसा के जो है, यही है ना, जब भी कोई दावा करता है सच्चा या दावा झूठा कहीं भी होता है, हर एक को कुछ ना कुछ हामी तो मिल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ तरफदार हर एक को मिल जाते हैं। मूसा के भी कुछ तरफदार तो है ना, दलीलें पेश कर चुके हैं, मुझे दिखा चुके हैं, लोगों पर असर कायम कर चुके हैं। अगर तुम अभी इन्हें कत्ल कर दोगे तो ये शहीद बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, और जो मानने वाले हैं वो अपने अकीदे में पक्के हो जाएंगे। और अगर इनको इनके हाल पे छोड़ दिया तो झूठी बात ज्यादा देर तक बाकी, बोल झूठ का खुल ही जाता है। अगर मूसा का दावा झूठा है, इनको मार देंगे तो इनका मजहब, इनका दीन, इनका मकतब जो है मुस्तहकम हो जाएगा। शहादत से हमेशा दीन को ताकत मिलती है, तबीयत होती है, मजबूत हो जाएंगे लोग और अपने अकीदे में। और अगर इनको हमने यूं ही छोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद लोग थक जाते, उब जाते हैं ना, नया नया अकीदा है, सबने अपना लिया है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ता लोगों पर मूसा की हकीकत वाजे और आश्कार हो जाएगी, लोग मूसा को छोड़ देंगे, बात खत्म। इंजको काजबन फायदा ही किसको, इंजको सादिकन। और अगर कहीं वाकया मूसा का दावा सच्चा निकला, वाकया अल्लाह कोई है, वाकया ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं, वाकया अल्लाह ने इनको नबी बना करके भेजा है, अरे सलाम, इंजको सादिकन, और हमने इनको कत्ल कर दिया, युसिबकुम बाद अल्लज़ी यअदुकुम, तो जिस अजाब से मूसा डरा रहे हैं, अगर सच्चे हैं और हमने कत्ल कर दिया, अंजाम क्या होगा? उस अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे ना। तो कत्ल करने की सूरत में हमारा नुकसान ही नुकसान है, छोड़ देने की सूरत में हमारा कोई नुकसान नहीं। अब बताओ, कत्ल करना बेहतर है छोड़ देना बेहतर है? काबीना की राय पलट गई, काबीना की राय पूरी, नहीं 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 नहीं, मारने में फायदा नहीं, तो छोड़ ही देना चाहिए, मार कत्ल करेंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब, अगर ये अल्लाह की तरफ से झूठा दावा कर रहे हैं तो अल्लाह कभी भी झूठे और ये जो है ज्यादती करने वाले को कि हिदायत नहीं करता, रहनुमाई नहीं करता, ये खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद, ये खत्म हो जाएंगे। या कौम लकुमुल मुल्क अल्यौम, खिताब करते हैं लोगों, आज तुम्हारे पास पावर है, आज तुम्हारे पास ताकत है, मूसा कमजोर है, मौजूदा ताकत के बल पर तुम्हें इतना घमंड आ गया है कि तुम इन्हें खत्म करना चाहते हो। या कौम लकुमुल मुल्क अल्यौम ज़ाहिरीन फिल अर्ध, आज जमीन पर तुम ये जो है दंडनाते फिर रहे हो, यहां फौज भेजी जा रही है, वहां फौज भेजी जा रही है, वहां फौज, इधर देखो हर तरफ इस पे हमला कर दिया, उसको पकड़ लिया, उसको मार दिया, उसे खत्म कर दिया, जो चाहे फआल मा यशा बने हुए हो, ज़ाहिरीन फिल अर्ध फमन यनसुरना मिन बअसिल्लाह इन जाना, ये सब उसी वक्त तक है जब तक वो खामोश बैठा है। जिस दिन अजाब इलाही आ गया उस दिन तुम्हारी मदद कौन करेगा? तुम्हारी ये सारी ताकत कमजोर इंसानों के लिए तो ठीक है, उनको तुम दबा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये सारी ताकत खुदा के मुकाबले में कुछ नहीं है। लिहाजा आज मत देखो कि आज तुम्हारे पास ताकत है तो मूसा को अगर कत्ल कर दोगे तो मूसा तुम्हारा कुछ जो है बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर मूसा को कत्ल करने के नतीजे में खुदा को गैज आ गया, खुदा जो है रहमत खुदा, अगर ये जो है गजब खुदा में तब्दील हो गई, उस ताकत का मुकाबला फिर कौन कर सकता है? इस खौफ उसने, इस इस्तदलाल ने पूरा मंजर तब्दील कर दिया। तो जनाबे मोमिने आले फिरौन, अगर फिरौन के दरबार में से ताउन दे रहे थे, जितना ताउन दिया नहीं उससे ज्यादा ताउन ले लिया। अगर वो न गए होते दरबार में तो मूसा की जान न बचती और ये मिशन आगे नहीं बढ़ सकता था। जनाब यूसुफ अगर गए थे, जनाब यूसुफ के जाने का मकसद जो है वो यही था। चुनांचे आप देखें रवायतों में मिलता है कि जनाब यूसुफ जब हाकिम बन गए, पूरी हुकूमत के दौर में कभी जनाब यूसुफ ने पेट भर के खाना नहीं खाया, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, ताकि उन्हें जिन्हें भूखों का ख्याल रहे, भूखों का ख्याल जहन से निकल ना जाए, जानते रहे कि भूख क्या है,
ماہ رمضان کا روزہ اسی لیے واجب ہونے کا ایک سبب یہی تھا نا کہ لوگوں کو بھوک کا احساس ہو جائے کہ بھوک میں تکلیف ہوتی کیسی ہے, تاکہ جب کسی بھوکے کو دیکھیں تو ان کا دل جو ہے پسیجے, دل میں جگہ بن جائے ان کی جو ہے مدد کے لیے, اور ہاتھ اٹھ سکے ان کی مدد کے لیے. اور جب وہ 7 سال جو ہے بحرانی دور ختم ہو گیا اور بالکل جو ہے جب خوشحالی کا زمانہ آ گیا اور سب کو ہلاکت سے بچا لیا جناب یوسف نے, کام ہو گیا, اگر نہ آتے یہ سب لوگ ہلاک ہو جاتے. جب کام پورا ہو گیا تو بادشاہ کے بعد اپنا استعفیٰ لے کے پہنچ گئے, میں وزیر خزانہ ہوں نا, سارا مال میرے پاس ہے, قحط کے زمانے میں لوگوں سے جو سونے چاندی وغیرہ دیے تھے مالداروں سے, سماجی انصاف کے لیے بہترین طریقہ اپنایا تھا بیلنس کرنے کے لیے, گیہوں چاہیے گھر میں کیا ہے کا سونا ہے چاندی کا لو, سونا چاندی لیتے تھے اور گیہوں ان کو سپلائی کرتے تھے غریبوں کو فری میں مفت میں دیا جاتا تھا, اکٹھا کا یہ سارا خزانہ میرے پاس موجود ہے. کام ہو گیا, یہ خزانہ آپ کے ہاتھ میں, یہ حکومت کی چابی آپ کے ہاتھ میں, خزانے کی چابی آپ کے ہاتھ میں, میں چلا خدا حافظ. ایک نصیحت ہے کہ حکومت کرنا عدل کے ساتھ کرنا, میرا مقصد حکومت کرنا نہیں تھا, میرا مقصد تھا مظلوموں کو نجات دینا. اس عمل کو یوسف کے دیکھتے ہی بادشاہ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, اسلام قبول کر دیا. پیدا جہاں کہیں بھی قانون وہی ہے. 8ویں امام نے جب یہ جو ہے مامون کا جو ہے ولی عہد بننا قبول کیا, خیالی جائیں گے ان کی حکومت میں تعاون دیں گے مگر کم سے کم انہیں فائدہ پہنچائیں گے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ دین مذہب اسلام عوام کے لیے حاصل کریں گے. اب وہ ان کو ولی عہد بنانا چاہ رہا ہے امام کو, امام پہلے چاہ رہے جو فائدہ مامون لینا چاہ رہا ہے, مامون فائدہ کیا لینا چاہ رہا ہے, اپنی حکومت کو جواب دینا چاہتا ہے. تو ولی عہد کا مطلب ہے کہ آپ نے خلیفہ کو تسلیم کر لیا. ولی عہد مطلب کیا ہے, ہمارے بعد یہ بات کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے حق ہے نا, امام جانشین کس چیز کے بنیں گے, باطل کے یا حق کے, حق کے جانشین بنیں گے یا باطل کے جانشین کس کے بن رہے ہیں, مامون کے جانشین. اگر مامون باطل ہے تو امام بھی باطل, اگر مامون حق ہے تو امام بھی حق. امام کو ولی عہد بنا کر کے مامون اپنے لیے جواب فراہم کرنا چاہ رہا تھا, ایک مقصد اس کا. امام نے پہلے انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد جب اصلی چہرہ مامون کا سامنے آیا اور دھمکیاں دینے لگا, مار ڈالیں گے, کاٹ ڈالیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اب سب کو پتا چل گیا کہ یہ زبردستی بنایا جا رہا ہے. نتیجے میں وہ جو جواب لینا چاہتا تھا ختم کر دیا. تو جو اس کو فائدہ پہنچنا ہے اس کے فائدے کی مقدار کو جتنا گھٹا سکیں, اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. امام اللہ علیہ السلام نے جب قبول کیا جو ہے ولایت عہدی کو تو وہاں پر بھی مقصد یہی مقصد ہے. چنانچہ کسی نے امام رضا سے پوچھ لیا کہ آپ اور مامون کے ولی ہے, یہ ہوا کیسے, خوب دھمکی دے رہا تھا مار ڈالنے کے, مر جاتے, مار ہی دیتا نا, وہ کربلا میں امام حسین بھی شہید ہو گئے, آپ بھی شہید ہو جاتے, مر جاتے, مرنا تو ہے ایک دن, اور معلوم ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھوں جو ہے مرنا ہے, تو 2-4 سال کے بعد کے بجائے 2-4 سال پہلے ہی مر جاتے. اس وقت امام رضا نے جواب دیا, وہ یہی جواب دیا ہے, میں کون ہوں, یہ جو ہے جانشین پیغمبر, وسیع پیغمبر, اور جناب یوسف کون تھے, پیغمبر تھے, میں پیغمبر کا جانشین ہوں, یوسف پیغمبر تھے, ان کے زمانے کا بادشاہ کون تھا, کافر تھا, ہم جس کے ولی عہد بن رہے ہیں وہ کون ہے, بظاہر تو مسلمان ہے نا, بظاہر جناب یوسف نبی ہو کر کے کافر کی حکومت میں شامل ہو گئے, تو میں جو ہے جانشین نبی ہو کر کے اگر باطل حکومت میں شامل ہو گیا تو جو مقصد یوسف کا تھا وہی مقصد ہمارا ہے. جب بھی باطل طاقتوں میں جانا ہے, بہت ساری مثالیں ہیں, مولا کائنات یہ جو ہے مشورہ دینے کیوں جاتے تھے نا, مشورہ دینے سے فائدہ ان کو بھی پہنچتا تھا, میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب روم سے سفیر آیا تھا سوال لے کر کے خلیفہ کے پاس, سوال لے کر کے آیا, خلیفہ کو سوال کا جواب نہیں معلوم, اگر مولا جواب نہ دیتے سکی تو ہوتی نہ ان کی, بدنامی تو ہوتی ہے نہ ہوتی ہے, खलीफा बने बैठे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाए, वो आया था चला गया, खाली हाथ चला गया, रोहतांग में जाके बदनामी होती। लेकिन बदनामी सिर्फ उनकी ना होती, उस मनसब की बदनामी होती। फलाने जवाब नहीं, खलीफे रसूल खुदा को जवाब नहीं आता था, खिलाफत बदनाम हो जाती। खिलाफत पे कौन आके बैठा है, इससे बहस नहीं है। फला इमाम बड़ा है, फला सेंटर है, फला इदारा है, फला मदरसा है, फला स्कूल है, फला साहब हाकिम उस पर आके काबिज हो गए हैं, तो हम उस स्कूल को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, उस इदारे को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। आज उनके हाथ में है, कल इंशाल्लाह उनके हाथ से बाहर निकल जाएगा, इदारे को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अब इदारे को बचाने के चक्कर में उनका भी फायदा हो जाता है, इदारे को बचाने के चक्कर में उनका भी। मैं चूंकि अमेरिका में मुख्तलिफ शहरों में जाता रहता हूं, घूमता ही रहता हूं, बहुत सारे सेंटरों में बार दफा देखा है कि फला साहब इदारे के सेक्रेटरी सदर बन गए और फला साहब को इनसे जो है कद है, लड़ाई है, तो जान बूझ के कोशिशें करते, हत्ता वॉशरूम में जाकर के ऐसी हरकतें कर देते हैं कि लोग वो पूरा चौक हो जाए, बंद हो जाए, उबलने लगे, और जितने लोग आएंगे मुमरीन साहब इंतजामिया को जो है वो गाली दें और लोगों की निगाहों से गिर जाए, अगली दफा इलेक्शन को हार जाए, चाहे उस इदारे को हजारों डॉलर का नुकसान पहुंच जाए। तो बहुत दफा हुआ है कि वो चौक हो गया, बंद हो गया, उबला उबल करके सारे का सारा नीचे टपका, ये तोड़ना वो तोड़ना, कारपेट खराब ये खराब, हजारों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया उसे। तो देखना ये है कि कितना दीन को फायदा हो रहा है, कितना उन्हें भी फायदा हो जाएगा। मगर चनचे मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं कि फखशी तो इन लम अनसुर इस्लाम व अहला अराफ इस्लाम हदमन व सलमन तकून मुसीबत व बिहा अलैया اعظم من فوت الولايه عليكم التي هي مطاع ايام قلائل। मैंने क्यों इनका साथ दिया? बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, मैं आपस में कोई अख्तलाफ तो था ही नहीं, तो खामखा शियों ने गढ़ दिया है कि उनमें अख्तलाफ था। वाला अख्तलाफ होता तो शेर खुदा उनकी मदद करने के लिए आते। हाँ, शेर खुदा वैसे ही मदद करने गए थे जैसे यूसुफ के थे। खुद मौला फरमा रहे हैं कि मैंने ये देखा कि अगर मैं इस वक्त मदद न करूंगा तो शख्स को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन शख्स को जितना नुकसान पहुंचेगा उससे ज्यादा नुकसान दीन को पहुंचेगा, उससे ज्यादा नुकसान ये जो है मुसलमानों को पहुंचेगा। हुकूमत हमसे छिन गई, एक मुसीबत है, एक नुकसान है उम्मत के लिए, लेकिन इस्लाम को अगर नुकसान पहुंच जाता है वो नुकसान इस नुकसान से कहीं बड़ा है। तो मुहिम और अहम देखना है नुकसान कहां कम है, कहां ज्यादा है। कम नुकसान को ले लेंगे, ज्यादा नुकसान को अवश्य। बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे नमूने हैं। एक सवाल यहां ये पेश आता है कि चलो जनाब यूसुफ ने तो इसलिए कबूल कर लिया, बादशाह ने क्यों उनको पेशकश की थी? बादशाह तो पहचान चुका था यूसुफ को, ये किस मिजाज के हैं, ये जुल्म बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जो मौजूदा आईने हुक्मरानी है उनके यहां, यूसुफ इसे जो है बर्दाश्त करने वाले नहीं है। एक गुनाह न करने के खातिर तो बेचारे 12 साल जेल काट के आए, तो यूसुफ तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दरबार का निजाम उस वक्त क्या था? ये जो जालिमाना निजाम है, जुल्म सितम पर मबनी निजाम है, तो क्या अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा था बादशाह? ऐसे को वजीर आजम बना रहे हैं जो इनकी हुकूमत की चूल्हे हिला देंगे? उसने क्यों पेशकश किया? कभी कभी होता यह है कि कितनी ही करप्ट हुकूमत हो, बार दफा उनके लिए खतरा यह हो जाता है कि या खुद को बिल्कुल से खत्म कर दें। बार दफा तहरीकें इस तरह के शुरू हो जाती हैं, हालात हुकूमत के ऐसे हो जाते हैं कि इसको संभालने के लिए अगर फला साहब आ जाएंगे तो हुकूमत के हालात संभल सकते हैं, वरना हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। और फला साहब हमारे मुखालिफ है, दुश्मन है। कभी कभी हुक्मरान दुश्मन शख्स को जो है बर्दाश्त कर लेते हैं असल हुकूमत को बाकी रखने के लिए। उस वक्त हालात वो थे, अगर वो तूफान, वो सैलाब, वो ये जो है खुशहाली और कहत अगर ये सब आ जाता, जिस वक्त ज्यादा बारिश हो रही थी उस वक्त इंतजाम न किया जाता, जिस वक्त कहत पड़ रहा था उस वक्त की तैयारी न होगी, तो हुकूमत ही हमारी खत्म हो जाएगी, बचेंगे ही नहीं। दरअसल चलो अब आज के बाद से हाकिम तो रहेंगे, जालिम नहीं रह जाएंगे, हुकूमत तो फिर भी रहेगी ना। जैसे यूरोप वगैरह के अंदर ये जो है तशबीह सही नहीं है, फिर भी उसके लिए आईनी बादशाह है कुछ नहीं, अगर है तो फिर भी नाम तो है, किंग तो लिखे तो जाते हैं, इख्तियार छिन गए हैं, ये फिर भी किंग तो है, कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही रहा है, महल वगैरह तो अपना बरकरार है ना सर, दिल को बहलाने के बहुत सारी चीजें मौजूद है उनके पास। बादशाह ने मतलब यही देखा अगर यूसुफ को इस वक्त नहीं पेशकश करते हैं हुकूमत की, बोलो ये कि मालूम है कि यूसुफ जब आएंगे तो फिर हमारी मंशा के मुताबिक हुकूमत नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने इसको कबूल कर लिया। सलाम रहमतुल्लाह। यहां पर जनाब यूसुफ ने अपनी तारीफ की है, इजअल क्या कहा था उससे, इजअली अला खज़ाइनिल अर्ज़, ये जो जमीन का खजाना है पूरा हमारे हवाले कर दो, क्यों कर दो, इन्नी हफीज़ुन अलीम, अपनी तारीफ कर रहे हैं ना, मैं बहुत बड़ा दानिशवर भी हूं और मैं पाकदामन हूं अलीम हूं, अपनी तारीफ कर रहे हैं। और अपनी तारीफ करने से मना किया गया है इस्लाम में, अपनी तारीफ करने से मना किया गया है इस्लाम में, आप अपनी तारीफ न करें। देखिए तारीफ दो तरह की है, एक तरह तारीफ ये जो है बड़ाई हांकने के लिए है और एक दफा अपने को जो है पहचानवाने के लिए। आप कहीं बैठे खाम खाम इशारा कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर, किसी तरह लोग जान जाए कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं आलिम दीन हूं, मैं आयतुल्लाह हूं, मैं उतीतुल इस्लाम हूं, ताकि लोग हमें अहमियत दें, एक दफा नहीं है। आप अपना तारुफ करा रहे हैं खिदमत के लिए। कभी कभी होता है जहाज में या जो है वो ट्रेन में अक्सर ऐलान होता है अगर कोई डॉक्टर यहां पर है तो किसी की हालत अचानक ये जो है वो खराब हो गई है, क्योंकि हार्ट का दौरा पड़ गया है जहाज के अंदर, जब तक जहाज लैंड करेगा अस्पताल ले जाए मुमकिन इसकी जिंदगी खत्म हो जाए, अक्सर सुना गया ऐलान करते हैं। अगर कोई डॉक्टर है अभी डॉक्टर साहब नहीं, मैं कैसे कहूं कि मैं डॉक्टर हूं, इस्लाम ने तो मना किया है, मैं कहूं कि जी मैं डॉक्टर हूं, मैंने इतना पढ़ा है और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, ये भी कह दूं साथ में तो ये सब तो हमारी तारीफ हो जाएगी ना। नहीं, इस्लाम ने इससे नहीं मना किया है, क्योंकि ये जो अपना अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी सिफत बयान कर रहे हैं, ये तफाखुर के लिए नहीं है, खिदमत के लिए है, बताने के लिए है, साबित करने के लिए इस चीज को है। वहां पर न सिर्फ ये कि अपना तारुफ कराना और अपने को पहचानवाना, अपनी खासियत को और अपनी काबिलियत को बयान करना जो है मना नहीं है बल्कि जरूरी है, बाद औकात वाजिब हो जाता है, बाद औकात वाजिब है कि आप जी मैं डॉक्टर हूं, मैं इसको इसका इलाज कर सकता हूं। हदीस में है कि यदा दहारतिल बिदआफ अलल आलिम अन युज़हिरा इल्मा, बिदअतें जब फैलने लगे तो आलिम पर वाजिब है कि अपने इल्म को जाहिर करे। मैं एक दफा यहां आऊं और आने के बाद को जी मैंने 20 साल पढ़ा, 19 साल पढ़ा, फला आयतुल्लाह मैं हुजरत इस्लाम हूं, मैं पता नहीं क्या हूं, आयतुल्लाह हूं, अल्लामा हूं, फला हूं, यूं अपने डिंग मारो में बैठे, ये कभी है। लेकिन अगर लोग कह रहे भाई यहां कोई है जो ये फिक्री मसला बता सके, मैं चुपचाप बैठो, नहीं मैं कैसे कह दूं, कहूंगा कि मैं आलिम हूं तो जाहिर सी बात है कि तो नहीं, यहां पर जरूरी है उसे मसला जानना है। रोजा हमारा आज का कैसे होगा, आज आप कौन, आपको बताना पड़ेगा जी मैं फला हूं, मैं हौज़े इल्मे हुकूम में इतने साल मैंने पढ़ा है, ये अपना तारुफ करा देना। वहां पर जनाबी यूसुफ ने जो कहा कि इन्नी हफीज़ुन अलीम, ये फख्र फरोशी के लिए नहीं है, बड़ाई हाँकने के लिए नहीं है, बल्कि खिदमत करने के लिए अपने को पेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद वक्त खत्म हो गया, आखिरी जुमला इसमें कह दूं कि खुद मौलाए कायनात ने मुख्तलिफ जगहों पर अपना तारुफ कराया है, खुद बेशकशकिया रखे देख लें, शुरू ही यहां से हुआ है, अमावल्लाह लकद तकम सहा फलान, फला साहब ने कभी से खिलाफत को जबरदस्ती खैच तान करके पहन लिया है, खैचतान के पहन लिया, व इन्नहु लयालम, हालांकि पता है, अन्ना महल मिनहा महलुल खुतबे मिन रहा, खिलाफत में और मुझ में वही राबता है जो चक्की में और उसके कील में होता है, चक्की की जो कील होती है, अगर कील ना हो चक्की नहीं चल सकती है। इसी तरीके से अगर मैं ना रहूंगा तो ये खिलाफत नहीं चल सकती है, मेरे बगैर खिलाफत बेकार है। अदूल अपना कर रहे हैं ना बोला, यन हदर सैर, जानते हो मैं कौन हूं, मैं सरचश्मा इल्म हूं, इल्म के सैलाब का सरचश्मा मैं हूं, वला यरका इलैया पैर, मैं कितनी अजमतों का मालिक हूं, मेरी अजमतों को समझना तो दूर की बात है, तायरे फिक्र भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। मेरी अजमतों
लोगों को ताहिर फिक्र भी नहीं था, आज तो आखिरी दिन है ना, तो चार मिनट अगर बढ़ भी जाता है तो रोजा हाल इंशाल्लाह मकरूह नहीं होगा। तो परेशानी की बात नहीं, बात पुलिस से कंप्लीट कर दो, पुलिस से बात कंप्लीट कर दो। तो अपना तारुफ अगर किया गया तो तारुफ इसलिए किया गया, उसके बाद आखिर में खुदा कहता है वल्ला अजरुल आखिरत खैरुन लिल्लज़ीन आमनु व कानू यत्तकून। ये तो दुनिया में हमने यूसुफ को अता किया हुकूमत, हुकूमत इसकी कोई कीमत उमत नहीं है, ये जो हुकूमत मिलेगी यूसुफ को ना इसकी कोई कीमत नहीं है, इसे कोई अर्जिश नहीं है। असल चीज क्या है, आखिरत का जो अजर है वो अहम है, किनके लिए, जो ईमान वाले हैं और तकवे वाले हैं। ईमान तकवा दोनों, न बगैर ईमान के तकवा किसी काम का, न तकवे के बगैर, कीमत दोनों की है, ईमान की अपनी कीमत, तकवे की अपनी कीमत, लेकिन कारामत कब होगी जब दोनों साथ आएंगे। अलग अलग अगर इनको लेकर के आओगे तो इनकी कोई कीमत नहीं मिलने वाली है। मिसाल देते हैं औरतें, ये जो है शादी ब्याह में जाना है यूं तो यूं ही सही, तो ये जो है जेवरात पहनती हैं औरतें, वो जेवरात में से एक जेवर है जो कान में पहना जाता है, दो बुंदे हों अगर एक बुंदा है तो औरत पहनेगी, एक कोई औरत पहनेगी उसे, एक बुंदा चलो एक ही सही पहन के चले जाते हैं, एक कोई नहीं पहनेगी, जबकि दोनों बुंदों की कीमत है, कीमत दोनों की है, ऐसा नहीं कि उसकी कीमत नहीं है, कीमत इसकी भी है, कीमत उसकी भी है, कारामत उस वक्त होंगे जबकि दोनों साथ पहने जाएंगे। ईमान की भी कीमत है, तकवे की भी कीमत है, लेकिन असर कब इनका जाहिर होगा, आखिरत का अजर कब मिलेगा, जब ईमान के साथ तकवा हो, तकवे के साथ, न ईमान के बगैर तकवा न तकवे के बगैर ईमान। चुनांचे कुरान कहता है कि वला अजरुल आखिरत खैरुन लिल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। आमनु में ये जो है माजी का सीगा है और यत्तकून ये जो है मुदारे का सीगा। तकवा कभी कभी नहीं, हमेशा। अगर बाद लोग कभी कभी माह रमजान में मुत्तकी हो जाती है, इसके दिन रमजान में टीवी बंद, अब ईद आ गया, ईद आ गई, खोल दिया गया, फसली होता है तकवा बाद लोगों का, फसली तकवे से काम हर जैसे होता है ना, फसल हिंदुस्तान में आम के फसल तकरीबन खत्म हो गए, हम यहां रह गए आम के फसल वहां खत्म हो गई, अब जाएंगे नहीं मिलेगा। तो बाजों का तकवा, बाजों का ईमान जो है फसली होता है, कुछ का तकवा जागता है माह रमजान में, और माह रमजान में बास का तकवा सिर्फ इफ्तार के वक्त जागता है, रोजे नहीं रखते हैं मगर इफ्तार में आगे आगे सबसे जल्दी उठी को होती है, सबसे एतराज, अरे ये क्या है भाई, दोनों नमाज एक साथ कराते हो, साथ में दुआ भी है और नाफिला भी है, लोगों को जो रोजेदार है उनकी तरफ से एतराज कम मिलता है, जो रोजा नहीं रखे होते हैं उनकी तरफ से एतराज ज्यादा मिलता है, फसली है। किसी ने कहा भाई आप क्या करने इफ्तार के मौके पर आए हैं, रोजा आप ही रखते, नमाज आप ही पढ़ते, आपको इफ्तार से क्या मतलब। तो पलट के उन्होंने जवाब दिया आप क्या चाहते हैं, रोजा मैं नहीं रखता, नमाज मैं नहीं पढ़ता, कुरान मैं नहीं पढ़ता, हज के लिए मैं नहीं जाता, इफ्तार भी मैं करूं पक्का काफिर बन जाऊं। सबूत है ईमान के लिए कुछ ना कुछ तो, सभी ईद है पहला, तो कुछ ना कुछ तो ईमान के लिए सबूत के लिए तो चाहिए ही नहीं। कानू यत्तकून, ये बहुत सारे सबूत ही जो रह गए, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो हाजिर हूँ। बहरहाल इस मुद्दत में आप हजरात को जो है वो ये जो है जहमत दी, ख्वाबो मोमिनीन जो यहाँ बैठे रहे हैं, आते हैं इतनी दूर से अपना वक्त सर्व करके, या वो लोग जो नेट पर बैठे हुए हैं, तकरीबन जैसा कि इत्तला मिली है ये जो है 1500 के करीब लोग जो है नेट के ऊपर होते हैं, अपना वक्त उन्होंने यहाँ पर सर्व किया, हमने आपका वक्त लिया। अगर हमने आपके वक्त के लिहाज से खिदमत नहीं की हो आपकी जितना देना चाहिए था आपको उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद, अगर उससे न पहुंचा सका हूं और आपका वक्त जाया हुआ हो, तो मैं जो है वो बहरहाल की जो है माफी का खासगार हूं, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है, आपने अपना वक्त हमारे अख्तियार में दिया, हमारी बातों को सुना, अब बता हमारी अपनी कोई बात, कोशिश यही थी हमारी कोई बात ना हो, जो बात हो खुदा की बात हो, पैगंबर की बात हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात हो,
قرآن کی آیتیں رسول کی حدیثیں ائمہ کے ارشادات انہیں کے سائے میں، کہ پھر بھی بہرحال اگر ضائع کیا ہو آپ کا وقت، میں اس کی آپ سے جو ہے وہ تہ دل سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر اس ایک مہینے میں گفتگو کے دوران کوئی تلخ بات کہہ دی ہو تو کہ کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ تلخ لب و لہجہ نہ اختیار کروں، پھر بھی بشر ہیں انسان ہیں ہو سکتا ہے، تو بہرحال آپ سب حضرات سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو، ہمارا یقیناً جو ہے مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اگر کسی کو ٹھیس پہنچ گئی ہو تو سمیع قلب سے آپ سب حضرات سے جو ہے معافی کا خاص کار ہو، خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. ماہ رمضان اسی لیے ہے، روح کو آلودگیوں سے جو ہے صاف کرنے کے لیے، تقویٰ سے قریب ہونے کے لیے، گناہوں سے یہ جو ہے مغفرت کے لیے. خدایا اگر تو نے ابھی تک ہمیں معاف نہیں کیا ہے، اب یہ آخری لمحات ہیں ماہ رمضان کے آخری